तो देखते हैं आज हम सूरतुल नहल। अता अम्रुल्लाह, आ गया अल्लाह का फैसला। फैसला मतलब अमर मतलब फैसला, कौन सा फैसला? अजाब का भी हो सकता है और कयामत का भी फैसला होता है, हो सकता है। दोनों ही अमर है, दोनों अल्लाह के अमर से हैं। अमर वो चीज है जिसमें अल्लाह ताला ने बस कुन फरमाना है और उसने हो जाना है, ना उसके लिए किसी सबब की जरूरत है, ना किसी देरी उसमें लगेगी उसके प्रोसेस को होने में, बल्कि जूं ही कहा जाएगा कुन तो वो हो जाएगा। अल्लाह ताला का फैसला आ गया, कौन सा फैसला? यही अजाब का या कयामत का? तो कयामत तो अभी तक नहीं आई। असल में अल्लाह ताला के हाँ जो टाइम है वो हमारे टाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया के 50,000 साल गुजरते हैं तो वहां का एक दिन होता है, तो यहाँ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं वहां के लिए। और लेकिन ये हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का फैसला आ गया मतलब है, यानी बिल्कुल करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जो अपनी ये दो उंगलियों को मिला के, ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर मिला के फरमाया, मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं, इतनी करीब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना ये कयामत की निशानियों में से है कि अब बस कयामत आ जानी है, कयामत अब करीब ही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तो उसे कपड़ा खोल के बैठे होंगे अभी, वो उनको लपेट भी नहीं सकेंगे। और एक शख्स अपना हौज भर रहा होगा और उसमें से कुछ पी भी नहीं सकेगा, और एक शख्स ऊंटनी का दूध निकाल रहा होगा और इसमें से भी पी भी नहीं सकेगा, और लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि इतनी देर में कयामत आ जाएगी। यानी इतनी अचानक, क्योंकि कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा कि अच्छा पहले ये हो रहा है, फिर लोग वॉर्न हो गए हैं कि अच्छा कयामत आ रही है, अच्छा पता नहीं कल आ जानी है, लोग परेशान हो रहे। नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं होगा, बिल्कुल अचानक से। तो ये अमर है अल्लाह का। अच्छा, अब आप यहां देखिए, अतः जो है मैंने आपको बताया ये माजी का सीगा है, तो आ चुका अल्लाह का फैसला, अभी तो नहीं आया। तो माजी का सीगा क्यों लाया गया? इसलिए याद रखें, जब भी कयामत की बात होती है, वहां के अहवाल की बात होती, तो यूजली आप देखेंगे कि माजी में बात की जाती है। और उसकी वजह ये है कि एक तो माजी की जो बात होती है ना वो कंफर्म्ड होती है। अब देखें, जो कल हो गया, अब आज तो नहीं हम शक करेंगे कि कल पता नहीं हम कहीं गए थे या नहीं गए थे। अब वो अगर गए थे तो वो हो चुका, वो कंफर्म्ड है कि आप गए थे, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला के हाँ ये चीज इतनी कंफर्म है कि इसमें ऐसे ही है हमारे लिए, जैसे माजी में कोई चीज गुजर चुकी होती, इतना इसको कंफर्म समझो, ठीक है। तो माना तो मुजारे में करते हैं कि आ गया, लेकिन सीगा माजी का यूज हुआ है। और अल्लाह ताला के हाँ क्योंकि कोई चीज माजी हाल मुस्तकबिल कुछ नहीं, उसके लिए सब इक्वल है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि जो पीछे हो गया वो तो कंफर्म है, आगे का पता नहीं। ये इंसानों के लिए होता है, पता नहीं। अब हम सोचते हैं कि आज हम वहां जाएंगे तो हमें पता नहीं हम जा भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हम इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुस्तकबिल ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, उसको शक हो या पता नहीं ऐसा हो या नहीं। नहीं, उसको हर चीज का ऐसे ही इल्म है जैसे कि पिछली गुजरी हुई चीज का इल्म होता है। फला तस्ताजिलू, तो तुम जल्दी ना मांगो उसको। इसका मतलब है कि कुछ तो वहां पे समथिंग वॉज गोइंग ऑन, जिसके ऊपर एकदम से ऐसी बात की गई कि सूरत शुरू होती है और ऐसे लगता कि जैसे कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर कहा गया कि तुम जल्दी ना करो। समथिंग वॉज गोइंग ऑन, राइट? अब जिसे समझ आता है ना, ना ये एकदम से इस तरह से कह देना, इस तरह यूजुअली सूरत शुरू नहीं होती। तो अब इससे पता चल रहा है कि वो लोग इतनी ज्यादा इस चीज को मांग रहे थे कि आप बताएं ना कब आएगा फिर अजाब। आप तो रोज हमें कहते हैं कि भैया है, अगर तुम मानोगे नहीं तो अजाब आ जाएगा, मानोगे नहीं तो अजाब आ जाएगा, तो अब क्यों नहीं आता? इब्ने अब्बास कहते हैं जब आयत नाजिल हुई ना सूरह कमर की, इख्तारबत सात वही शक्ल कमर, तो कुफारे मक्का ने इंतजार शुरू कर दिया, आ जाता है कल आता है। जब गुजर गए दिन काफी तो कहने लगे आया तो है नहीं। फिर असुरम्बिया की पहली आयत उतरी, एक तरह बलि नासी हिसाब हो, तो वो क्या इन लोगों के हिसाब का बहुत करीब आ गया, तो तब भी उन्होंने कहा कि अच्छा अब आने वाली कयामत, तो इंतजार करने लगी। जब नहीं आई तो उन्होंने कहा देखे, और इस चीज को वो बेस बनाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकार का, कि अगर ये सच्चे होते तो आना चाहते, अगर ये सच्चे होते ये इतनी हमें कहते हैं, एक तरह से हमें डरावे देते हैं कि कयामत आ जाएगी और अजाब आ जाएगा और तुम बच जाओ और तुम अपना आपको सही कर लो और ये मत करो जो तुम कर रहे हो, तो हम तो नहीं इनकी बात मान रहे, क्यों नहीं आती फिर कयामत, क्यों नहीं आता फिर अजाब। तो अजाब और कयामत दोनों के मानों में ये अमर हो सकता है। और आपको समझ आ गई ना माजी का सीगा क्यों आया, इसलिए कि इसके होने में कोई शक नहीं है, ये यकीनी है, ऐसे ही है जैसे माजी में कोई वाकया हो चुका हो। और ये भी हमें पता चल रहा है कि वाकई कयामत करीब है, और जब अल्लाह ताला का हुक्म हो जाएगा ना तो वो फिर जरा भी देर नहीं लगनी, लिहाजा उसको करीब समझे। अल्लाह का हुक्म सर पे खड़ा हुआ है, बस अल्लाह ताला के कुन कहने की देर है। आपने वो हदीस नहीं सुनी कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में पकड़े हुए हैं, मुंह में उन्होंने डाला हुआ है और उनकी नजरें अल्लाह ताला के अर्श की तरफ लगी हुई हैं, उनके कान लगे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब उनको हुक्म हो कुन, तो वो सूर फूंकते, ये सो रेडी। हालांकि उनका तो हिसाब किताब नहीं है, किसका हिसाब किताब है, किसको कयामत के दिन खड़े होना है अल्लाह ताला के सामने, उनको फिक्र ही नहीं जिन्होंने खड़े होना। और वो इतने ज्यादा अलर्ट हैं, अलर्ट तो हमें होना चाहिए। तो फरमाया फला तस्ताजिलू, तुम जल्दी मत मांगो उसको, क्यों ना जल्दी मांगो, क्यों नहीं हमें जल्दी मचानी चाहिए, हम भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा कयामत करीब है, अच्छा उसकी निशानियां पूरी हो गई, अच्छा कब आ रही है, अच्छा बड़ा इसकी हमें एक्साइटमेंट हो जाती है। नहीं, जल्दी मचाने का इसलिए फायदा नहीं है कि जितनी जिंदगी हमें मिली हुई है ना, ये मोहलत है काम करने की, ये मोहलत है अमल करने की, तौबा करने की। जिस दिन ये जिंदगी खत्म हो गई ना, सब मोहलत खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने चांस दिया, तुम अपने लिए अजाब मांगते हो, तुम अपने लिए कयामत मांगते हो कि जल्दी आ जाए, इसीलिए मौत मांगने से भी मना किया गया ना, हर इंसान की मौत भी उसकी कयामत ही है, कि दुनिया की मुश्किलात से तंग आके या बीमारियों से या मसलों मसाइल से कभी नहीं ऐसा कहेंगे अल्लाह मुझे मौत आ जाए बस, इसलिए कि जितना वक्त मिल रहा है ये हमारे लिए बेहतर है। हाँ बहुत ही कोई तंग आ जाए तो बस ये कह सकता है या अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, लेकिन मौत ना मांगे इसलिए कि बस खत्म हो गई तो फिर कभी वापस थोड़ी आएंगे अमल करने, कभी तौबा का चांस थोड़ी मिलेगा। सुबहाना हुआ तआला अम्मा युशरिकून, सुबहान वो पाक है इससे, क्योंकि वो बातें करते थे ना, यहाँ पे क्यों कहा गया ये बात क्यों आ गई, क्योंकि वो कहते थे कि देखो आप नाउज़ बिल्ला आप तो झूठे हैं, आप तो हमें गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कि भाई अजाब आ जाएगा, क्यों नहीं आ रहा, यानी नबी को झुठलाना ऐसे ही है कि अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करना, कि अल्लाह नाउज़ बिल्ला कि वो इतना कमजोर है कि हम पर अजाब नहीं ला सकता, तो उस कॉन्सेप्ट की को करेक्ट किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत को तुम ऐसे समझते हो कि वो अजाब नहीं ला सकता, वो तो पाक है हर कमजोरी से, तुम उसको कमजोर समझते हो। तो वो सुबहान का मतलब क्या होता है या तस्बीह का मतलब क्या होता है, अल्लाह की पाकी बयान करना, हर किस्म के ऐब, हर किस्म का नक्स, हर किस्म की कमजोरी, हर किस्म की वो चीज जो अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है, हम कहते हैं अल्लाह उससे पाक है। ठीक है, जो भी किस्म की कोई भी कोई तसव्वुर में भी कोई कमजोरी आ सकती है ना, मसलन बीमारी है, बुढ़ापा है, भूख है, प्यास है, कमजोरियां है ना ये, औलाद की चाहत है, औलाद की या किसी की मोहताजी है, ये सब कमजोरियां वीकनेसेस हैं, इंसानों में तो हो सकती है, अल्लाह ताला इनसे पाक है। जिस तरह का भी ऐब, जिस तरह का भी फ्लॉ, नक्स आपके जहन में भी कहीं आ सकता है ना, तस्वुर में भी कहीं आ सकता है, अल्लाह ताला की जात उससे पाक है। तो जब हम तस्बीह करते हैं ना, सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो असल में हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं, छोटी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई चीज इनमें से अल्लाह में नहीं है। लेकिन ये सलबी पहलू है इसका। सलबी कैसे लिखते हैं, इसको लिख लें आप, सीन लाम बा या। ये बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगी। ये जैसे, अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी की मसलन कह रहे हैं, फलां जो है ना वो झूठी नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो बदअखलाक नहीं है, वो गंदी नहीं है, वो कैरेक्टरलेस नहीं है, यानी आप नहीं कर करके ना, तो उसके अंदर से सारी बुराइयों को उसमें से उसको पाक करार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक उसकी अच्छाई बयान करना है। लेकिन हो सकता है कि अगर वो झूठी नहीं है, तो हो सकता है वो सच्ची भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो ये अभी मुकम्मल तारीफ नहीं हुई उसकी। उसकी मुकम्मल तारीफ तब होगी, तो आप कहेंगे वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है, वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है, वो गंदी नहीं है, वो साफ सुथरी है, ठीक है। तो ये है जो आप नहीं करके कहते हैं ना, ये सलबी पहलू है। बाज लोग इसी को तारीफ समझते हैं, ये मुकम्मल नहीं है जब तक इसके साथ इजाबी पहलू ना आए। इजाबी पहलू क्या है, कि वो रब पाक है, वो रब करीम है, वो रब रहीम है। जब हम कहते हैं वो रब जुल्म नहीं करता, तो ये इसकी सलबी तारीफ है। लेकिन जब हम कहते हैं वो रहमान और रहीम है, तो इजाबी पहलू है इसके अंदर। ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अयूब से पाक है, हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर ये कमाल की सिफात है। जो भी कमाल की सिफात, जो भी खूबियां कोई तसव्वुर में भी आ सकती हैं, उनकी इंतहा मेरे रब के अंदर है। ये होती है तस्बीह, इसको कामिल तस्बीह कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, इसीलिए ये कलमा इतना प्यारा। तो अल्लाह ताला हर नक्श से भी पाक है, और उसमें तमाम खूबियां भी कमाल दर्जे पे मौजूद है, और वो उन तमाम शिर्क से बुलंद है, अबव है उससे, जो तुम घटिया छोटी छोटी शिर्क की बातें करते हो, इन सब से वो बुलंद है, बहुत ऊपर है, वे बियॉन्ड दिस, जो शिर्क तुम करते हो उसके साथ। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, वो उतारता है फरिश्तों को, किसके साथ, बिर्रूही, रूह के साथ। अब ये रूह का वर्ड जो है कई चीजों के लिए आता है। रूह का वर्ड मसलन है रूहुल कुदस के लिए भी आता है, जिनको रूहुल अमीन जिब्राइल अलैह सलाम के लिए भी आता है। इसी तरह रूह का वर्ड इंसान की जो रूह है उसके लिए भी आता है। ठीक है, हमारे अंदर भी तो एक रूह है ना, और इसी तरह रूह का वर्ड वही इलाही के लिए भी आता है, ठीक है। कुरान पाक में और जगहों पे भी रूह के वर्ड को लाया गया वही के लिए। इसलिए कि देखें, जैसे इंसान की जो जिंदगी है ना, वो पॉसिबल नहीं है बगैर रूह के। हमारे अंदर से रूह निकल जाए, हम क्या है, डेड है, सही है ना। रूह के साथ ही जिंदगी है ना। इसी तरह दिल की जिंदगी, दीन की जिंदगी, ईमान की जिंदगी भी वही इलाही के साथ है। अगर वही ये कुरान जिंदगी में नहीं है, वही इलाही जिंदगी में नहीं है, तो दिल भी मुर्दा है। हमें इस रूह की तो फिक्र है जो हमारे जिस्म के अंदर है, कि रूह ना निकल जाए कहीं, हम मर ना जाए कहीं। इस खतरे को कितना बड़ा खतरा अपने लिए समझते हैं, कि जितना दिन भी हो सके मेरी रूह मेरे अंदर बाकी रहे, रूह निकल गई तो मैं मुर्दा हूंगी। लेकिन दिल की रूह का इंतजाम नहीं सोचते, उसका नहीं पता, उसकी फिक्र नहीं है कि उससे मेरा दिल मुर्दा हो जाएगा। हम मुर्दा हैं अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये रूह नहीं है, कुरान नहीं है, तो यकीन करें हम चलती फिरती लाशें हैं, सिर्फ मुर्दे हैं और कुछ नहीं है। सांस लेते हैं मगर मुर्दा है, तो हमारा दिल ही जिंदा नहीं है। कभी इसको भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो नहीं चाहते आप दिल को जिंदा करना, नहीं चाहते आप अपना दीन ईमान जिंदा हो मेरा, तो फिर इस कुरान से जुड़ना पड़ेगा। ये फरिश्ते रूह को लेकर उतरते हैं, मिन अमरी ही, उसके हुक्म से, किसके, अल्लाह ताला के। पहले आ गया ना अमरुल्लाह, तो मिन अमरी ही, उस रब के हुक्म से, किस पर, आला नहीं यशाउ मिन इबादी, ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे कि किस पे उतरते हैं फरिश्ते वही लेकर, ये अल्लाह डिसाइड करेगा। क्योंकि कुफारे मक्का कहते थे अगर रिसालत मिलनी थी तो किसी बड़े सरदार को तो मिलती, एक यतीम को मिल गई तो इसको क्यों मिली, तो हम इतने बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे ताइफ में, इतने बड़े बड़े सरदार थे, अगर सूट करती थी तो उनको करती थी। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ भरा होता ना कि इस दुनिया की दौलत और ओहदे जिसको मिल जाए वो ही बड़ा है, तो उनके नजदीक वो ही बड़े थे, अल्लाह ताला के नजदीक थोड़ी हमारी दौलतें देखी जाती हैं, हमारे असबाब, हमारे माल, हमारे ओहदे देखे जाते हैं। तो वो जिसके ऊपर चाहे वही को नाजिल करें अपने बंदों में से, आप चूज नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला की चॉइस होती है, खुद चुनता है वो। तो अब ये वही की समझ आ गई कि कैसे ये रूह है, जैसे इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए रूह की जरूरत है, इसी तरह ये दिल की जिंदगी, इसलिए इसको रूह कहा गया। और अल्लाह ताला जिसको चाहे नबुव्वत के लिए चुन ले। और अब ये जो नबुव्वत का काम है, इनका नबी का मकसद है, जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, वो करेगा क्या काम, क्या काम करेगा, उसका उसका पर्पस क्या है उसको भेजने का, आप बताएं नबी क्यों आया। शायद आप में से कोई कह रहा हो वो इसलिए आए ताकि हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएं, वो इसलिए आए ताकि ये जो बेहयाई है ये खत्म हो, लोग बेईमानी ना करें, लोग ऐसे ना करें, लोग बड़े जहालत के अंदर थे तो जहालत से निकालने के लिए, इसके लिए उसके लिए, पता नहीं ऐसे हमारी चीजें जहन में होती हैं। लेकिन पैगंबर एक काम के लिए आए जो बताया गया यहाँ पे, अन अंविरू के वो खबरदार करते, अन्नहू के बेशक वो, कौन वो, अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई इलाह मगर मैं, फत्तकूनी, बस डरो मुझसे, ये था उनका मैसेज अन से लेके फत्तकून तक, और तमाम नबियों का यही मैसेज था। ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, ये उसका रिजल्ट है कि इंसान फिर तमाम बुराइयों से ही बच जाता है, शराब, जुए, जिना, बेईमानियां, बेहयाइयां, सब चीजों से बच जाता है, लेकिन वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए यही तो फर्क है एक सोशल रिफॉर्मर में और एक नबी में। सोशल रिफॉर्मर भी तो यही करते हैं ना कि भाई लोगों, अब भाई देखो बेईमानी ना करो, मिलावट ना करो, रिश्वत ना लो, लोगों लो किसी पर जुल्म ना करो, फला ना करो, तो सोशल रिफॉर्म में यही करते हैं ना। लेकिन नबी की चीज डिफरेंट होती है, उसका मैसेज डिफरेंट है। हाँ इसके इफेक्ट होंगे, इसके नताइज, इसके रिजल्ट निकलेंगे कि सोसाइटी में खुद ब खुद फिर जब एक तौहीद का कलिमा सब पढ़ने लगेंगे और एक अल्लाह से डरते होंगे तो सारी चीजें उनकी फिक्स हो जानी है। मगर ये नहीं कि वो लोगों को दूध में पानी ना मिलाओ, इसके लिए, इसको बताने के लिए आए, वो बड़ी रिश्वत ना लो, भाई वो किसी के ऊपर जुल्म ना करो, इसको बताने के लिए आए, वो भाई बेटियों को जिंदा दरगोर ना करो, ये बताने के लिए आए, नहीं, वो एक बड़ा मैसेज लेकर आए। और इस अम्ब्रेला के नीचे सारे ही काम आ जाते हैं फिर, कि उनसे बाज करना और लोगों को जन्नत की तरफ लेकर जाना, वो सारे इसके अंडर हैं। तो अब तौहीद की तरफ आएंगे ही तो आखरत में अजाब से बचेंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, वो सब इसके अंडर हैं। मगर उनका प्राइमरी मैसेज क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि रसूल क्यों भेजे गए, तो आपने ये नहीं लिखना ताकि उनकी जिंदगियां संवार दें, उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए, उनके जो काम भी सही हो जाए, और लोग माँ बाप की नाफरमानी ना करें, और लोग बड़े अच्छे इंसान बन जाएं, इसलिए नहीं, अनजीरो के वो इंतजार करने के लिए आए कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, बस उससे डर जाओ। और यह हम सूरह आराफ में पढ़ चुकी हैं, हर पैगंबर का वहां पे बताया गया, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, इतने पैगंबरों का बताया गया, सब ने एक ही पैगाम दिया कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। ये और ये खबरदार किया। इंजार का मतलब क्या होता है? वॉर्न कर देना। अब हम उसका तर्जुमा डराने के लिए आए, ये तो कर देते हैं, लेकिन असल इसका माना क्या होता है? वॉर्न कर देना कि अगर तुमने ये नहीं समझी बात तो इसका नतीजा बड़ा ही गलत निकलेगा, तुम तबाह हो जाएंगे। अब इसको आप डरावा कह दें, कुछ भी कह दें, आपको कोई कहे जनाब आगे गड़ा है, अगर आप इस रास्ते पे गए उसमें गिर जाएंगी, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके जा रही हैं, आगे तो बहुत बड़ी खाई है, आपकी गाड़ी वहां पे गिर जाएगी, तो आप कहेंगे हाई मुझे डरा रहा है ये। डरा नहीं रहा, वो तो आपको वॉर्न कर रहा है, वो तो आपका भला कर रहा है, वो तो आपको बचाना चाहता है। तो उसको डरावा कह तो देती है, लेकिन एक्चुअली वो वार्निंग है। तो नबियों का फर्स्ट काम क्या होता है? इंतजार करना। हाँ, तबशीर भी करते हैं वो, ऐसे नहीं कि सिर्फ वार्निंग ही देते रहते, तबशीर भी करते हैं, बशारते भी देते हैं, मगर फर्स्ट थिंग जो होती है ना वो इंतजार होती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे चढ़ के क्या फरमाया था, पहली दफा क्या फरमाया था कि मैं एक लश्कर, अगर तुम्हें कहता हूं कि पीछे एक लश्कर है जो हमलावर होने वाला है, तो मेरी बात मानोगे? लोगों अपने आप को आग से बचाओ, लोगों अगर ये शिर्क छोड़ दो, लोगों एक इलाह है, तो तबाही हलाकत से बचाने के लिए उनको वॉर्न किया और उनको ये बताया कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, तो उसी का तकवा इख्तियार करो। अब देखिए ना, बाज लोग कहते हैं आए डराते क्यों है, डराते क्यों? भाई हमारे काम ऐसे हैं, हम खुद सोचे हमारे काम किस तरह के हैं। गफलतों में हम पड़े हुए हैं, सोए हम हुए हैं, भूले हुए हम अपनी आखरत को, अपने जाने को, दुनिया में गुम हुए पड़े हैं, कोई परवाह नहीं अल्लाह के हुक्मों की। तो अब आपको बशारते देना शुरू कर दीजिए, ये कहना शुरू कर दीजिए जी बहुत अच्छा आप कर रहे, यही कहा जाएगा ना, इससे बाज आ जाओ, गफलत से निकल आओ, छोड़ दो ये सारी चीजें, वरना आगे अंजाम सही नहीं है। फिर कहते हैं मैं डराते क्यों, तो आप बताइए इसके ऊपर क्या होना चाहिए? पैगंबरों ने भी तो इंतजार किया था, तबशीर तब कीजिए जब लोग इस चीज को समझ जाएं, जब लोग इस चीज को मान जाएं, तो उनके लिए तबशीर है, तबशीर है। तो आप फरमाया फत्तकूनी, मुझसे डरो। इंसान डरता किससे है? जिसको बड़ा समझता है, पावरफुल समझता है, जिसके हाथ में कुदरत समझता है, जिसके हाथ में अपना नफा नुकसान समझता है। देखते नहीं आप ये उनसे, ये जो लोग मुशरिक होते हैं, ये कभी सांपों को पूजा कर रहे हैं, कभी आग की पूजा कर रहे हैं, कभी पता नहीं जिस चीज को, या सूरज चांद की पूजा शुरू कर देते हैं। तो सांप वगैरह से तो डरते हैं इसलिए, मुझे हमें को नुकसान ना दे दे, आग से भी डरना, सूरज चांद को बड़ा समझना। तो कहीं ना कहीं इंसान ना किसी को कुछ समझ रहा होता है, किसी के हाथ में कुछ समझता है, कुछ पावर उसको लगती है किसी के पास, तो उसके आगे झुकना शुरू कर देता। लेकिन जो हर चीज अल्लाह के हाथ में समझता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो डरता है, फिर जो मखलूक के हाथ में समझता है वो फिर मखलूक से डरता रहता है। समझाई बात? तो हम किसके हाथ में समझते हैं? कहने को तो हम कहते नहीं, हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हम उसी को बड़ा समझते हैं, हम अल्लाह हू अकबर कहते हैं, हम ऐसे करते हैं, लेकिन हम जिंदगी में किसी और के हाथ में पावर समझते हैं, उसीलिए उसके आगे झुकते हैं। हमें लगता है ये हमें नफा दे देगा, ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए हम उससे डर डर के चलते हैं, और अल्लाह से उतना ही डरते जितना उन लोगों से डरते हैं। कि हमारे नजदीक अल्लाह माफ करे, उनके हाथ में शायद ज्यादा पावर है। अकीदे का बहुत बड़ा लेसन है इसमें, और अकीदे को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबको। हम कलमा तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे अकीदे दुरुस्त नहीं है अभी तक, और ये अकीदे को मजबूत करना भी जरूरत होती है, ये भी कमजोर हो जाता है। तो अपने आप को ये बातें बार बार दोहरानी चाहिए, खलक समावाती वल अर्द बिल हक, उसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया, उसने पैदा किया है, और जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है वो उसने पैदा किया है। और कैसे पैदा किया? बिल हक, बा मकसद पैदा किया है। बेफायदा ऐसे ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो कायनात है, कुछ ने कहा, ये राम ने खेल तमाशे के लिए बनाई, खेलने के लिए बनाई, अल्लाह ताला ने ये खेलने के लिए नहीं बनाई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ और होंगे, अल्लाह ताला ने तो बड़ी बामकसद बनाई। और मैंने आपको एक और बात बताई थी पहले, हक का एक और मतलब आपको बताया था। हक क्या होता है? हक वो होता है जिसको अपना सबूत देने के लिए किसी खारजी दलील की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपना सबूत होता है, वो खुद मुंह से, यानी वो अपने आप की सच्चाई खुद बयान कर रहा होता है, आपको कोई एविडेंस लाने की जरूरत नहीं होती उसके लिए कि आप इसको प्रूव करें, कोई कहे जी प्रूव करो इसको, तो खुद दलील है। अच्छा आप कैसे, ये हक है आसमान और जमीन की तखलीक में कैसे सबूत है बताएं, सोचा करें, खुद भी अपना ब्रेन यूज करें। देखें दुनिया में जितने लोगों ने खुदाई का दावा किया या जितने झूठे इन खुदाओं के पैरोकार है ना, आप एक बात सब में कॉमन देखेंगे, जिसकी भी कोई पूजा करता है, चाहे ईसा अलैहि सलाम की करता है, चाहे किसी दरख्त की करता है, चाहे किसी राम और सीता की करता है, किसी की भी करता है, कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये आसमान और जमीन पैदा किए, या किसी पैरोकार ने नहीं कहा जी हमारे ये फलां है उसने ये आसमान और जमीन पैदा की, कोई कह ही नहीं सका कि सूरज मेरी मर्जी से निकलता है, मेरी मर्जी से गुरूब होता है। देख लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुनाजरा किया था नमरूद के साथ, तो उन्होंने क्या फरमाया था, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, तुम इसको उलट करके दिखा दो। प्रभू ही था, तो मबूत रह गया, ही वो स्पीचलेस, कुछ नहीं कह सका कि नहीं नहीं मैं करता हूं। ये वो दलाइल हैं जिनके आगे सब कुछ चुप लग जाती है, कैसे कह सकते हैं वो आसमान और जमीन हमने पैदा किया, उनके पैरोकार भी कैसे कहें। तो ये जो निजाम है ना आसमान और जमीन के, जितना बड़ा सिस्टम है, ये खुद बोल बोल के बता रहा है हमारा खालिक वो एक रब है, हमारा खालिक कोई और नहीं है, सुनो इनकी आवाज, ये बता रहे हैं। तो जो फिर खालिक है, बंदगी तो उसी की जाएगी, इबादत तो उसी की होगी। ताला अम्मा युश्रिकून, बुलंद है उससे जो वो शिर्क करते हैं, वो मखलूक को खालिक के बराबर कर देते हैं, नहीं वो तो इससे बहुत बुलंद है, ये मखलूक है सारी की सारी। तो देख लें अल्लाह ताला ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर तौहीद को बयान कर दिया, और बिल्कुल सिंपल अल्फाज के अंदर ये साबित कर दिया कि देखो आसमान और जमीन की तखलीक भी, इसका हक से पैदा होना भी तुम्हें साबित कर रहा है कि एक अल्लाह है। और हक का मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी चीज को होना चाहिए वैसे ही है, यानी जो उसका पर्पस है उसको वो सॉल्व करने के लिए, उसको जैसा बना होना चाहिए वो वैसे ही है, उस चीज के लिए परफेक्ट है। जैसे ये जमीन अल्लाह ताला ने बनाई इंसानों के रहने के लिए, तो इसके अंदर आप देखिए हर वो चीज मौजूद है जो इंसानों की जिंदगी के लिए, उनकी सस्टेनेंस के लिए, उनके उनके आगे चलने के लिए, उनके परवरिश पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी वो यहाँ पे मौजूद है। जैसी इसको होना चाहिए था वैसी ही है। अगर ये मार्स जैसी होती, अगर ये मरकरी जैसी होती, अगर ये किसी और सितारे सैयारे की तरह होती, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल ही नहीं थी लाइफ। तो जो इसकी शक्ल, जो इसका रंग, जो इसका साइज, जैसा इसकी टेक्सचर, जैसा इसका होना चाहिए था, जो हवा का यहाँ पे रेशो होना, जो ग्रेविटी का रेशो होना, जो जो भी चीजें यहाँ की थी ना, वो परफेक्ट है इंसानों के सर्वाइवल के लिए, यहाँ उनकी सस्टेनेंस के लिए, वो अब रह ही नहीं, कायम ही नहीं इंसान की जिंदगी रह सकती थी अगर अल्लाह ताला ऐसे परफेक्ट ना बनाता तो। बिल हक, हक के साथ बनाया, ऐसे लगता है कोई बहुत एक्सपर्ट है जिसको पता है कि इसकी ये जरूरतें होंगी, इसको अपने यहाँ पे रहने के लिए ये चाहिए, इसके मुताबिक ये रेशो होना चाहिए हर चीज का, हर चीज का ये वेट हो, हर चीज की ये इसके अंदर सिफात हो, तब ये मखलूक यहाँ रह सकेगी। ऐसे नहीं लगता किसी एक्सपर्ट ने बनाया। वो एक्सपर्ट और कौन हो सकता है? जिस जिसके पास इल्म होगा वही हो सकता है, जो बाखबर होगा, जो फ्यूचर को भी जानता होगा, जिसको पता है कैसे क्या होना चाहिए, जिसकी नजर हर चीज पे होगी, वो रब अल्लाह है और इसके सिवा कोई नहीं। किसके पास इतना नॉलेज है? इनको तो जिसको भी उन्होंने बनाए हुए हैं अपने खुदा, चाहे वो दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो दुनिया में मौजूद है, उनको तो ये भी नहीं पता था हमने मरना कब है, उनको तो ये भी नहीं पता हम ये खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, उनको तो ये भी नहीं पता उनके जिस्म में कोई बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो भी डॉक्टर के जाते हैं, कैसे खुदा है वो? और अगर दुनिया से जा चुके तो जब दुनिया में थे कभी बीमार तो हुए थे ना, कभी उनके साथ मसले मसाइल तो हुए थे ना, तुम कैसे उनको पूछते हो? फिर देखो जमीन व आसमान की तखलीक के बाद फरमाया खलक इंसान मिन नुतफतिन, इंसान को एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया। नुतफा, नुतफा वो पानी जो टपक के निकलता है, टपकने वाला हकीर कतरा, उससे पैदा होने वाला इंसान सोचता नहीं है कि वो कैसे देखने वाला बन गया, सुनने वाला बन गया, चलने फिरने वाला बन गया, भागने वाला बन गया, सोचने वाला बन गया, तो सोचते नहीं कैसे बन गया। जरा इंसान आप सरसरम ने दिखाया था ना इसी तरह से, आप भी अपनी हथेली के ऊपर जरा सा थूक फेंक के देखें और ये देखें कि ये इंसान था, इससे इंसान पैदा हुआ। इतने उस कतरे से तो घिन आती है कि जो माँ बाप थे ना उनके भी कपड़ों पे लग जाता तो धो डालते, बहा देते उसको, घिन खाते उससे। लेकिन जब अल्लाह ताला उसी कतरे को इतना प्यारा बना देता है तो वो भी चूम चूम के रखते। किसने बनाया फिर ऐसा? तुम तो पानी की एक हकीर बूंद थे, मैं और आप क्या थे? हम अपनी असलियत को सोचें जरा कभी, मैं और आप भी वो ड्रॉप थे और इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम वही रह जाते तो हमारे माँ बाप भी हमें सीने से ना लगा के रखते, वो भी कराहत खाते हमसे। कितना करम है मेरे रब तेरा कि तूने हमें ऐसा बना दिया कि जो देखे गोद में उठा ले, जो देखे झुलाने लगे, जो देखे प्यार करे, जो देखे रहम खाए। अल्लाह हू अकबर, किसका एहसान है ये? किसने ऐसा बना दिया? वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन! कहां वो और कहां वो? हम बहुत इंप्रेस होते हैं ना देख के, कोई बिल्डिंग देख लेंगे, कोई ब्रिज देख लेंगे, कोई ठीक है, उन्होंने भी इंसानों ने भी अल्लाह ताला की दीवी अकल से ही बनाया, लेकिन हम इंसानों को ही एडमायर कर रहे होते हैं उसमें भी, उसमें भी अल्लाह ताला को नहीं एडमायर करते, उसकी तारीफ नहीं करते। ये कभी सोचें, ये तो फिर छोटी चीज है, कभी ये सोचें कि ये अपनी अपने आप को इंसान देखे, अपनी तखलीक पे गौर करें, कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या था और क्या करके रख दिया। ये हकीर तरीन से लेकर अशरफुल मखलूकात बना के रख दिया। अल्लाह हू अकबर। लेकिन इंसान का फिर क्या हाल हुआ? देखें वो पैदा हुआ, उसे ना चलना आता, ना फिरना आता, ना बोलना आता, ना अपनी हाजत बयान करनी आती, मोहताज ही मोहताज, अल्लाह हू अकबर, इतना मोहताज कि अगर आप उसको छोड़ देना, छोड़ दें अगर आप उसको तो मर ही जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि ना वो कूद उठ के कुछ खा सकता है। इवन जानवरों के बच्चे उतने मोहताज नहीं होते जितने इंसान मोहताज होते, इतनी अल्लाह ताला ने उसको फ्रेजाइल उतना पैदा किया होता है, जरा सर्दी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, कुछ नहीं, खुद अपना उठ के कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी गंदगी भी नहीं खुद साफ कर सकता, इतना ज्यादा वो मोहताज होता है। तो अल्लाह ताला ने उसको क्या किया फिर? उसको उसके हाथों पैरों में ताकत दे दी, उसकी आंखें देखने लगी, उसके कान सुनने लगे, वो उठ के चलने फिरने लगा, फिर वो बढ़ने लगा, पलने फूलने लगा, उसको खिलाया पिलाया, उसको नशोनुमा की उसकी उसकी परवरिश करने के लिए उसके साथ दो बंदे लगा दिए अल्लाह ताला ने अपने, जिनका दिन और रात बस यही काम है कि इसको ही पालें, इसकी परवरिश करें, इसको बड़ा करें, बस वो 24 आवर उसकी जॉब में लगे हुए हैं, उसकी खैरख्वाही कर रहे हैं, उसकी उनकी जिंदगी वो बन गया है। ठीक है, दो अल्लाह ताला ने अपने बंदे उसके साथ लगा दिए, बस वो पाल पूल के उसको जब बड़ा कर दिया, अब बड़ा सोचने समझने वाला, अब बड़ा बोलने वाला, अब बड़ा चलने फिरने वाला, अब एक्टिव, अब जवान, अब कुव्वत वाला हो गया, तो फिर पता है उसने क्या किया? फ़ाइदा हुआ खसीम मुबीन। शर्म कर इंसान के, फिर तू झगड़ालू बन गया खुल्लम खुल्ला। फिर कहता है अल्लाह ताला ने ये क्या किया, अफ्रीका में इतने लोग मर रहे हैं, मुझे बारिश नहीं हो रही वहां पे, ये क्या बात हुई? हो फलां को अंधा बना दिया। बोला ये क्या बात हुई, क्यों उसने उनको अंधा बनाया? वो देखो फलां जगह पे इतना जुल्म हो रहा है, वो देख नहीं रहा कि इतना जुल्म हो रहा है? अरे शर्म कर, तू किस मुंह से ये बातें अपने रब के लिए कर रहा, क्या चीज था तू? अब झगड़े करने लगा, बड़ा हो गया तो तुझे दलीलें आनी शुरू हो गई। खसीम वो होता है जो दलीलें दे दे के झगड़ता है, तो अपने खालिक और मालिक के लिए दलीलें देने लगा उसके खिलाफ। और कोई खुदा नहीं और कोई कयामत नहीं और मैं नहीं मानता अल्लाह का हुक्म, और मुझे तो ये लॉजिकल ही नहीं लगता, ये कहां की बातें कर रहे हैं, और ये मौलवियों की बातें। हल अता अल इंसानी हैनु मिन अदहर लम यकुन शैअ मज़कूरा, इंसान के ऊपर क्या लामत ना ही जमाना ऐसा नहीं गुजरा, तुम तो कुछ भी नहीं थे, यू आर नथिंग, एक एक जर्रा भी कोई चीज होती है ना, तुम तो जर्रा भी नहीं थे, तुम तो कुछ थे ही नहीं। जिस रब ने तुम्हें ये बोलने वाला, ये सुनने वाला, ये सोचने वाला बना दिया, तुम उसी के खिलाफ ही दलीलें देते हो, तुम्हें नहीं शर्म आती? कहते हैं हमसे नहीं माने जाते उसके हुक्म, तो कहते हैं हम मेरे पास नहीं उसके लिए टाइम। तुम अपने मुंह से बोलो ना बोलो, जब अपनी तुम्हारी जिंदगी ये बता रही है, तो तू एक्चुअली अपने जुबाने हाल से बोल रहे हो, तुम्हारी हालत ही है, भूल गए उसको ही, भूल गए। तुम थे क्या? अपनी औकात को तो समझो। एक वक्त ऐसा था जिसमें तुम ऐसी चीज थे जिसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता। फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो उसने बता दिया इसको सुनने वाला देखने वाला, क्या उसके एहसान का ये बदला कि तुम अपने खालिक के खिलाफ ही समात और बसारत को इस्तेमाल करने लगे? इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इसीलिए गुनाह जुल्म है, शिर्क जुल्म है, अल्लाह की नाफरमानी जुल्म है, किसे खुद बताए ना, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? ना तुम सोशल मीडिया पे बैठते हो, तुम टीवी पे बैठते हो, तुम्हें ना दीन की बातों से एलर्जी आती है, एलर्जी को तुम उनसे, अल्लाह रसूल का नाम आ जाए तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होने लगते हो, क्या बातें शुरू कर दी? कमॉन, व्हाट फॉर यू? इंसान जरा अपनी औकात तो देख, खुद को जरा आईने में तो देखे। ये इतना बड़ा जो जिस्म खड़ा हुआ है, किसी ने पैदा किया है, किसी ने बनाया है, तो अपने आगाज को तो देखो, छोटी सी आयत है और इंसान का बता दिया वो क्या था और क्या बन गया। हाँ अल्लाह ने तेरे ऊपर जो एहसान कर दिया वो उसका यही बदला है, तू उससे ही झगड़ने लगे। हाँ उसका यही कसूर है कि उसने तुझे पैदा क्यों कर दिया, नऊज़ बिल्ला। हाँ तो वो ऐसे ही है जैसे तुम उसको कसूरवार ठहरा रहे हो। सूरह यासीन में भी है ना कि इंसान क्या गौर नहीं करता कि हमने उसको कैसे पैदा किया, अब उसको दलीलें देनी आ गई है, अब बातें बनानी आ गई है, अब नखरे आ गए हैं, अब कहता मुझसे नहीं होता। जुबान उस रब ने दी, वो जुबान उसी के खिलाफ बोल रही, अल्लाह अकबर। ये अक्ल उसने दी तो चाहता तो तुम्हें पागल बना देता। अकल ही काम ना करती। वो दुनिया में ऐसे लोग हैं ना, उनकी अकल नहीं काम करती, माजूर हैं। ज्यादा तो मैं ऐसा बना देता, अकल ही ना तुम्हारी काम करती। फिर बताते बनाते बातें, फिर तुम अब बहसें करते हो, तुम अल्लाह के अहकाम में बहसें, उसमें मीन में खे निकालते हो, उसमें तुम्हें फ्लॉज नजर आते, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। अल्लाह अकबर, चाहिए तो क्या था कि इस अकल से काम लेके अपने खालिक को पहचानते, उसके आगे झुक जाते, उसके आगे रोते कि अल्लाह मैं क्या था, तूने मुझे क्या कर दिया, तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरी क्या औकात थी, मैं तो एक गंदे पानी की बूंद से ज्यादा नहीं था, मैं क्या था। खुद पहचानने तो सही खुद को, क्या इसी तरह थे हम हमेशा से, क्या ऐसी थी मैं। मगर बड़ा ना शुक्रा है जो अपनी मोहसिन के एहसानात को भूल जाए, बड़ा ही ना शुक्रा है। हम तो किसी के साथ जरा ही भलाई कर देते ना, उसके बाद बातें सुना सुना के उसको, नहीं मैंने तेरे साथ ऐसे किया, ये किया, ये किया, उसकी मजाल कहाँ है कि वो हमारे सामने आंख भी उठाए, और खुद रोज अल्लाह की ना शुक्रिया करते, नाफरमानियां करते, और हमें तो समझ ही नहीं आती कि उसने ये अहकामात दे क्यों दिए, हम कैसे मान ले हम ये। अब जो भी आपको अल्लाह का हुक्म मुश्किल लगता है, मसलन कोई भी चीज आपको मुश्किल लगती, नहीं ये नहीं मुझसे होती, ये नहीं मैं कर सकती, आए अमल करना बड़ा मुश्किल, तो जरा सोच लिया करें कि किसको कह रहे हैं। वो रब जिसने मुझे नुतफे से यहां पे खड़ा कर दिया, अगर आज उसने मुझे ये सूरत सीरत ये सब जिसम दे दिया, तो अब मुझे नखरे आ रहे हैं ये बातें कहने में। मसलन औरतों के लिए मिसाल के तौर पे पर्दा बड़ा मुश्किल है, तो क्या थे आप, आज पर्दा करना मुश्किल हो गया, किसको बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा किसको कह रहे हैं, वो जिसने आए गंदे पानी की बूंद से आज आपको इतना बड़ा करके खड़ा कर दिया, ना वो करता ना तो फिर देखते ना, तो इस तरह की कोई चीज की जरूरत ही नहीं थी। आर्ग्यू करना इसलिए आया कि उसने एहसान कर दिया, इसलिए एहसान का बदला फिर यही होना चाहिए था। फिर अब आसमान और जमीन की पैदाइश का बताया, तुम्हारी अपनी पैदाइश को देख लो। अब उसके बाद सबसे ज्यादा जो बेदुन लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट थी ना, वो उनके कैटल थे, उनके कैटल, उनके ऊंट, उनके बकरियां, ये चीजें, घोड़े, या और ये जो जानवर थे ना उनके, वो उनके लिए बहुत बड़ी कमोडिटी थी। ना सिर्फ उनका माल था, उनकी सवारियां थी, उनका खाना पीना था, उनसे और बहुत सा बेशुमार और फवायद लेते थे। तो इसलिए उसके बाद फौरन उनका जिक्र आया, वल अनआम खलकहा, और चौपाए उसने पैदा किए। चौपाए में अनाम में कौन होता है, भेड़ बकरियां ऊंट गाय वगैरह, ये सब अनाम है, उसने पैदा किए। लकुम फीहा दिफ़ुन, इसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। आप देखें इनके ऊपर जो ऊन होती है भेड़ों के ऊपर, वूल की आज भी कितनी महंगी होती है, और जितना भी इंसान ने दूसरा गर्मी के लिए गर्म रखने के लिए अपने आप को जो सामान तैयार किया, मगर वूल अपनी जगह जो प्योर वूल है उसका देखें कोई नेमल बदल नहीं। सेकेंडली आप देखें चमड़ा जो है लेदर, ये गाय वगैरह का लेदर होता है, आप देखें आज भी उसकी जैकेट्स कितनी महंगी होती, वो चाहे कितना भी सिंथेटिक बना लिया लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसमें इंतजाम किया, और फिर देखें ना जब कोई भी नहीं फैक्ट्रियां होती थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी, तो ये जानवर अल्लाह ताला ने चलती फिरती फैक्ट्रियां बना दी, इसे अपनी गर्मी का सामान ले लो, उसी से ऊन निकाल ली, उसको पहन लिया, सुभान अल्लाह। अच्छा अब इसमें ये भी है, और वह मुनाफे और फायदे इतने बेशुमार फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सवारियों के भी ये काम आते हैं, दूध भी का जरिया है, आमदनी का जरिया है, उनको बेचना खरीदना ये बढ़ते हैं, फिर उनसे अब आप एक गाड़ी ले ले, गाड़ी तो बच्चे नहीं देगी कि आप उसको भी बच्चों को भी बेच के और फिर उसे आगे, गाड़ी तो बल्कि आपके पास होती है ना, तो तब भी वो जितने दिन आपके पास रहती है तो पुरानी ही होती जाती है, उसकी वैल्यू कम ही होती जाती है, उतने की नहीं बिकेगी। लेकिन जो जानवर है अल्लाह ताला ने कैसी इस फायदेमंद चीज बनाई है कि आगे मल्टीप्लाई होता है,
उससे आगे से आगे और फायदा होता है, वो एक नहीं रहता, वो दो फिर चार फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो कितना फायदा है उसका। तो वह मुनाफे, और फिर कितना भी उसकी एज हो जाए उसको फिर पे फिर भी उससे फायदे ही हासिल होते रहते हैं। और नहीं तो वह मिन्हाता कुलून, उसमें से तुम खाते हो, उसका गोश्त भी खा लेते हो, उसका दूध पीते हो, उसके पर सवारी करते हो, उससे ऊन उतारते हो, उससे लेदर लेते हो, उसके बेचते खरीदते हो, कितने तुम्हारे काम की चीजें, उसकी इवन चर्बी भी यूज होती है, उसको पिघला के भी कितना मतलब कुकिंग में यूज होती है। वलकुम फीहा जमाल, और इसमें तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है। अब जानवर में भी ना आप देखें, इसीलिए तो जू बनाए जाते हैं, इसीलिए तो ये पेटिंग जू होते हैं, इसीलिए तो और इस तरह की जगह होती हैं जहाँ पे फार्म्स हैं, वहां पे खूबसूरती जानवरों से होती है। आज भी इनमें अट्रैक्शन है, आप देखें बच्चे कितने खुश होते हैं, इवन बड़े भी होते हैं उनको देख के, हीना तो रही हूं ना वह हीना तो तसरा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानवर का मालिक होता है उसको खुशी कब होती, जब तुम शाम को चुगा के लाते हो, शाम को ला रहे होते हो उनको और सुबह को चराने ले जा रहे होते, तो सारे जानवर ऐसे जो शाम को हैप्पीली आ रहे होते हैं और सुबह को भागे जा रहे होते हैं चरने के लिए, तो तू बाहर निकल के उनको चराते थे ना, घरों के अंदर तो नहीं ला के रखते थे उनको, बाहर मेडोज में या और बाहर जो जंगलों में लेकर जाते थे चराने के लिए। तो जिस वक्त वो जा रहे हैं और जिस वक्त आ रहे हैं, उस वक्त उनके में हुसन है और खुश कर देता है ना जो उनका मालिक है उसको। अच्छा अब आप देखें, जैसे मैंने बोला उस तरह यहाँ पे नहीं है, सुबह और शाम की बात नहीं, शाम और सुबह की बात है, यानी शाम पहले आए और सुबह बाद में, क्यों? जमाल दोनों टाइम्स पे है, लेकिन शाम का बर्ड पहले आया और सुबह का बाद में आया, कोई वजह आपको समझ आती है? देखिए वजह ये है, आपसे सवाल पूछो करो ना, आप भी सोचा करें, ठीक है? वजह यह है कि जब शाम को जो जानवर आते हैं ना, उनके पेट भरे होते हैं खुश खुश, मैंने आपको बताया ना, खुश खुश हैप्पीली आ रहे होते, वो जो होती है वो उनकी चाल और वो उनका मतलब जैसे जिस तरह उनका आना होता है ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। सुबह को भी अच्छे हैं, सुबह को भी अच्छे लगते हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन जो शाम को जिस तरह वो भरे हुए पेटों के साथ आ रहे होते हैं, तो उसका जमाल और ही ज्यादा है, उसकी खूबसूरती और ज्यादा है, ठीक है? इस वजह से पहले शाम का आया और बाद में सुबह का आया, तो ये वक्त दोनों बहुत भले होते हैं।